Iran Radio Podcast.
उसके परिवार में किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह आगे चलकर एक बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन तो उसके शिक्षक ने उसकी माँ को चिट्ठी लिखकर उसकी अयोग्यता, भूलने की आदत, समय की बर्बादी और लापरवाही की शिकायत कर दी। चर्चिल ने 8 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी भी अच्छा छात्र शुमार नहीं किया गया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 44वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। हम बात कर रहे थे चर्चिल की। शारीरिक कमजोरी की वजह से दूसरे आसानी से उन्हें धमका दिया करते थे। इसी वजह से शक्तिशाली और धनी परिवार से संबंध रखने के बावजूद उन्हें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बजाय रॉयल मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। उन्हें सैन्य स्कूल में प्रवेश के लिए भी 3 बार परीक्षा देनी पड़ी। वह हमेशा अवसाद से पीड़ित रहे और उन्होंने अपने अवसाद के विभिन्न चरणों को काला कुत्ता कहा था। चर्चिल ने 1890 के दशक में एक अखबार के लिए युद्ध के मैदान से पत्रकारिता करने की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें युद्ध की रिपोर्टिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजा गया, लेकिन अफ्रीका पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया। कुछ समय बाद वो उस कैंप से फरार होने में सफल हो गए जहां उन्हें कैदी बनाकर रखा गया था। भागकर ब्रिटेन पहुंचने के बाद उनका हीरो के रूप में स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। उनका राजनीतिक जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा था। एक दिन वो कंजर्वेटिव होते थे तो दूसरे दिन विरोधी कैंप में शामिल हो जाते थे। एक बार उन्हें नौसेना का कमांडर बना दिया गया, लेकिन युद्ध में हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि ठीक दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसी स्थिति में कि जब ब्रिटेन विनाश के कगार पर था, वो युद्ध में जीत हासिल करने की बात करते थे। आप पूछते हैं कि हमारी नीति क्या है? मेरा जवाब है कि जंग, समुद्र, ज़मीन और हवा के जरिए जंग, पूरी ताकत और पूरे वजूद के साथ जंग। आप पूछते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है? एक शब्द में इसका जवाब है जीत, हर कीमत पर जीत, क्योंकि जीत के बिना हम बाकी नहीं रह पाएंगे। लेकिन इस जीत की क्या कीमत थी? दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया की कुल आबादी का करीब 3% हिस्सा नष्ट हो गया। आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में लगभग 55 मिलियन आम नागरिक थे और दुनिया भर में करीब 28 मिलियन लोग भूखमरी और भोजन की कमी से मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में ही ईरान के शाह रजा पहलवी ने तटस्थ रहने का ऐलान किया, जैसा कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अहमद शाह काजार ने किया था। लेकिन अहमद शाह की तरह रजा शाह के पास भी निष्पक्षता का बचाव करने की ताकत नहीं थी, इसीलिए निष्पक्षता के बावजूद ईरान पर रूस और इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया। रूस ने उत्तरी ईरान पर धावा बोल दिया और इंग्लैंड ने तेल के कुओं की लालच में पश्चिम ईरान में अपने सैनिक तैनात कर दिए। वे ईरानी तेल पर अपना अधिकार समझते थे और इसे खोने के लिए तैयार न थे। यहाँ तक कि उससे होने वाली आमदनी से ईरान को कुछ नहीं देना चाहते थे। निष्पक्षता को त्याग कर कमज़ोर शाह ने इन दोनों शक्तियों से वार्ता शुरू की। 1942 में ईरान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, इस शर्त के साथ कि युद्ध के दौरान रूस और ब्रिटेन ईरान के राजमार्गों और रेलवे को सुरक्षा प्रदान करेंगे और युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान से बाहर निकल जाएंगे। इस समझौते में इंग्लैंड और सोवियत संघ ने वचन दिया था कि अगर ईरान में अकाल पड़ता है तो वो उसकी मदद करेंगे। ये शर्त इसलिए रखी गई थी क्योंकि ईरानियों को पहले विश्व युद्ध में बहुत कड़वा अनुभव हुआ था। १९१७ में जब पहला विश्व युद्ध समाप्ति पर था तो समय सिर्फ 2 साल के दौरान ईरान की 40% आबादी भूख और कुपोषण से मर गई थी। हालांकि ईरानियों ने युद्ध में निष्पक्षता का ऐलान किया था, उसके बावजूद युद्ध ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया था। अंग्रेजों ने खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में स्टोर कर लिया था, जिससे खाने पीने की बुनियादी चीज़ें दुर्लभ हो गई थी। अगर कोई चीज़ उपलब्ध भी थी तो इतनी ज़्यादा महंगी थी कि उसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। शाह भी प्रजा की चिंता के बजाय अपने लाभ की चिंता में था। सरकारी खजाने गेहूं और चावल से भरे हुए थे, लेकिन वो उसे सस्ती कीमतों पर लोगों को देने के लिए तैयार नहीं था। विदेशी ताकतों की बेरहमी और काजारी शासन के लालच के कारण करीब 30 लाख लोग भूख से मर गए। 1942 में जब ईरान ने इंग्लैंड और रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए तो वो भी आधिकारिक तौर पर मित्र राष्ट्र मोर्चे का सदस्य बन गया। रूस, इंग्लैंड और अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को ईरान में तैनात किया था। इन सैनिकों को भोजन की ज़रूरत थी, जिसकी आपूर्ति ये देश ईरान से ही करते थे। इसलिए फिर से पहले विश्व युद्ध की कहानी दोहराई जाने लगी। इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ खरीदे और उनका भंडारण कर लिया ताकि उसके सैनिक भूखे ना रहें। ईरानी व्यापारियों ने जब देखा कि अंग्रेज़ों को खाद्य पदार्थ बेचने से उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है तो वो आम लोगों को बेचने से बचने लगे। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कम हो गई और जो चीज़ें बाजार में बची थी उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं। इन परिस्थितियों में बिन बुलाए मेहमान भी ईरान पहुँच गए, पोलिश यहूदी। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और यहूदियों ने अपनी ज़मीन और अपनी जान खतरे में देखी तो वे सोवियत संघ की ओर कूच कर गए, लेकिन स्टालिन के कैंपों में उनके लिए काम अनिवार्य कर दिया गया। स्टालिन से फरार होकर इन लोगों ने ईरान का रुख किया। ईरान में लोग परेशान थे, इसके बावजूद उन्होंने उनका स्वागत किया। इनमें से कई लोग ईरान में ही रुक गए और आज तक ईरान में हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमरीका और इंग्लैंड ने 17.5 मिलियन टन हथियार रूस भेजे थे। इनमें से करीब आधे हथियार ईरान के रास्ते से रूस भेजे गए थे। इतनी बड़ी मात्रा में माल की ढुलाई से सड़कें और रेलवे लाइनें पुरानी पड़ गई थीं। अंग्रेज़ों ने किसानों को भी सड़कों की मरम्मत में लगा दिया, जिसकी वजह से ईरान में कृषि उत्पादन में 75% की गिरावट आ गई और भुखमरी ने भयंकर रूप ले लिया। देश में अभूतपूर्व महंगाई हो गई और तेहरान में खाद्य पदार्थों की कीमतें 500 गुना बढ़ गई। अमेरिका में ईरान के राजदूत अल्लाह यार सालेह ने अमेरिकी अधिकारियों के नाम एक पत्र लिखा और ईरान में होने वाले अकाल की प्रति चेतावनी दी। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने आशंका जताई कि निकट भविष्य में ईरान में अकाल पड़ सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी उन व्यापारियों की गर्दन पर डाल दी जिन्होंने खाद्य पदार्थों का भंडारण किया था। हालांकि वास्तविकता यह है कि ये काम पहले अंग्रेज अधिकारियों ने शुरू किया था। एक समय बाद जब उन्होंने देखा कि स्टोर किए गए खाद्य पदार्थ खराब होने लगे हैं तो उन्होंने सस्ती कीमतों पर आम लोगों को देने के बजाय उनमें आग लगा दी। देश के परिवहन पर उनका कब्जा था और वो उसे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। स्टालिन ने भी आज़रबाईजान में कृषि उत्पादों को जब्त कर लिया और उसे लाल सेना के हवाले कर दिया। 1942 के अंत तक पूरे ईरान में अकाल फैल गया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों की स्थिति बहुत ख़राब थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा कुपोषण, अवसाद और बीमारी ने भी लोगों को जकड़ लिया। सोवियत नियंत्रण वाले इलाकों में स्थिति कुछ बेहतर थी, लेकिन मध्य भाग में जो पहलवी शासन के नियंत्रण में था और पश्चिमी भाग में जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था, स्थिति अभी काफ़ी भयावह थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने अकाल की बात मानने से ही इनकार कर दिया या फिर कहा कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। चर्चिल का एक प्रसिद्ध कथन है, किन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। एक वो जो हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ता है और दूसरा वो जो अपने वादे नहीं निभाता और अपने वादों पर कायम नहीं रहता। 1939 और 1945 के बीच सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश नहीं था जो युद्ध के बुखार में तप रहा था, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। भारत के लोगों को भी ये त्रासदी झेलनी पड़ी। वे कई वर्षों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन रहे थे। भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में 87,000 युवा भारतीयों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं थी। भारत के जिस हिस्से को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां स्थिति काफ़ी भयानक थी। बृहत्तर भारत का बंगाल क्षेत्र बर्मा नामक क्षेत्र से सटा हुआ था, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्षेत्र ब्रिटिश उपनिवेश थे, लेकिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। इस हमले का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सैन्य टुकड़ियां और सैनिक उस क्षेत्र में भेजे। इन सभी सेनाओं को भोजन की जरूरत थी और अंग्रेजों ने बंगाल क्षेत्र सहित स्थानीय स्रोतों से अपनी सेना के लिए आवश्यक भोजन खरीदकर उसका भंडारण कर लिया। हालांकि युद्ध के दूसरे खर्चों के साथ ये खाद्य पदार्थ खरीदना महंगा था, अंग्रेजों ने इसके लिए सबसे आसान रास्ता चुना, पैसा छापना। किसी भी परिस्थिति में बिना किसी समर्थन के मुद्रा छापना समस्या का समाधान नहीं हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि क्षेत्र के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। वे बस लड़ाई जारी रखना चाहते थे और किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने की कोशिश में थे। संपूर्ण बंगाल क्षेत्र में अभूतपूर्व महंगाई हो गई और खाद्य आपूर्ति दुर्लभ हो गई। बंगाल में जीवन बहुत कठिन हो गया था। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। 16 अक्टूबर 1942 को पूरे बंगाल क्षेत्र में एक भयंकर तूफान आया जिसने एक ही दिन में घरों, बगीचों और खेतों को नष्ट कर दिया। इस घटना के कुछ गवाहों ने अपनी स्मृतियों में लिखा है, पूरा इलाका शमशान घाट बन गया था। उस दिन से बंगाल क्षेत्र के लोगों का जीवन पहले से भी अधिक कठिन हो गया। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गरीब लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। कई किसानों ने कुछ बोरी चावल के लिए अपनी ज़मीनें बेच दी। जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी। कई लोगों ने तो जीविका कमाने और मौत से बचने के लिए अपने बच्चों को भी बेच दिया। कुछ धनी व्यापारी ऐसी परिस्थितियों में अपनी संपत्ति बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने गरीब लोगों की ज़मीनें कम कीमत पर खरीदी और जब गरीब और भूखे लोगों ने मदद मांगी तो उन्होंने उनकी अनदेखी की। इन्हीं मुद्दों के कारण गरीबों और धनी लोगों के एक छोटे समूह के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। भूखे लोगों ने बड़े शहरों का रुख किया, लेकिन वहाँ भी स्थिति बेहतर नहीं थी। कई लोग जो रोटी का एक टुकड़ा खोजने के लिए सड़कों पर निकल आए थे, घर लौटने से पहले ही भूख से मर गए। बीमारी ने भी लोगों को प्रभावित किया। हालात ये हो गए कि एक दिन में कलकत्ता की सड़कों से 3,000 से अधिक शव एकत्रित किए गए। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेज़ ये मानने को तैयार नहीं थे कि अकाल पड़ा है। चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत में अकाल पड़ा है तो गांधी अब तक क्यों नहीं मरे। इससे कई साल पहले भी बंगाल के लोगों ने अकाल का अनुभव किया था, लेकिन उस वक्त आसपास के इलाकों से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती थी और अकाल और भूख पर काबू पाया गया था। हालांकि 1942 में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बर्मा पर कब्जा करने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए स्कॉच अर्थ पॉलिसी लागू की थी। उन्होंने सारे खेत, बगीचे, फसलें और यहां तक कि घास को भी आग लगा दी। इस अकाल का अनुभव करने वाले एक व्यक्ति ने उन कठिन दिनों के अपने स्मरण में लिखा था, मैं और मेरा परिवार कई दिनों तक भूखे रहे। उन लोगों को देखना डरावना था जिनकी त्वचा हड्डियों तक उधड़ भी गई थी। बहुत डरावना था। जब मैं किसी को देखता तो ये नहीं बता पाता था कि मैं किसी इंसान को देख रहा हूँ या किसी भूत को। मैं नहर के किनारे जाता और लाशों के ढेर देखता जिन्हें कुत्ते और गिद्ध खा रहे होते थे। अंग्रेज़ हमें मारने के लिए भूखा रख रहे थे। ऐसे एक समूह के बारे में चर्चिल ने कहा था कि उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोग भी थे जो दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे और उनमें सहानुभूति का अभाव था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ईरान में लगभग 4 मिलियन और बंगाल में लगभग 3 मिलियन लोग भुखमरी से मर गए। यह आंकड़ा किसी संगठन या निकाय द्वारा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन इस संख्या को भी दूसरे विश्व युद्ध में हुई मौतों से जोड़ना चाहिए। पहले विश्व युद्ध के बाद युद्धरत पक्षों के बीच एक संधि हुई थी, एक ऐसी संधि जिसके मुताबिक युद्ध में हारने वाले जर्मनी को विजयी पक्ष को बड़ी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वारसा संधि में निहित अन्याय और जर्मनों के अपमान ने जर्मन राष्ट्रवादियों के गुस्से को बढ़ा दिया। यही हिटलर के फासीवादी शासन की स्थापना का आधार बनी और दूसरे विश्व युद्ध के लिए भूमि प्रशस्त हुई। लोग कहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह युद्ध अभी जारी है। जिस प्रकार वारसा संधि पहले विश्व युद्ध को सभी युद्धों की समाप्ति में बदलने में असफल रही, उसी तरह दूसरा विश्व युद्ध भी अभी समाप्त नहीं हुआ था। इस युद्ध के अंत में इंग्लैंड ने इस्लामी इलाके पर कब्जा कर लिया था और सभी संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत इसे चरमपंथी यहूदियों के एक समूह ज़ायनियों को सौंप दिया। हाँ, फिलिस्तीन वही भूमि है। अंग्रेज़ों को हर बात पर पर्दा डालने की आदत है और ईरान और बंगाल के मामले में उन्होंने अकाल की बात छुपा ली। जिस संस्कृति ने चर्चिल को बड़ा किया, वहाँ कोई ईमानदार राजनेता नहीं था। उन्होंने अपने स्मरण में लिखा है, एक दिन मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था और मैंने एक कब्रिस्तान पर लिखा देखा, एक राजनीतिक और एक ईमानदार आदमी की कब्र। ये पहली बार था जब मैंने एक ही कब्र में दो लोगों को दफन देखा था। ऐसा लगता है कि चर्चिल ये कहना भूल गए, उन लोगों पर कभी भरोसा मत करो जो हमेशा झूठ बोलते हैं। दोस्तों, ये पॉडकास्ट ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप दिलचस्प विषयों पर पॉडकास्ट सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है iranradio.ir/hi।